कीर्तन हे भद्रमान महान दिन बिथ गए हमारे। समय सार परमागम की 142वीं गाथा और उसमें अपन ने शुरू की थी, उत्थान का पढ़ ली थी, गाथा पढ़ ली थी, गाथा का अर्थ पढ़ लिया था। अब जयचंद जी छावड़ा महाभारत में के बारे में क्या कहते हैं वो बात अपन पढ़ते हैं। यद्यपि गुरुदेव का, जयचंद जी छावड़ा का और अनेक अनेक कोटेशन देने से विषय का रिपीटिशन होता है, लेकिन अध्यात्म में विषय का रिपीटिशन होना दोष नहीं है, गुण है। क्योंकि हमको सारी जिंदगी करना क्या है, वस्तु का स्वरूप समझ कर और उसी का ही चिंतन मनन करना है। जब तक समझा नहीं है तो हमें समझने के लिए अध्ययन करना है, तो उसमें बांचना, परीक्षणा और अनुपरीक्षा करनी है, और उसके बाद सारे जीवन यदि हमारा उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं होता है कि कम होता है, तो बाकी जो आमनाय जिसे बोलते हैं हम, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय करना है, उसी का रिपीट करना है। ना मालूम हमारे चित्त में ये बात कैसे जम गई है कि जब शास्त्र में एक बात रिपीट होती है तो हमको ऐसा लग रहा जी तो कल आ गई थी, और नवोकार मंत्र 108 दफे रिपीट करते हो तो सारी जिंदगी क्यों है? तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगता, हर मामले में ऐसा है। रोटी रोजाना खाते हो तो कभी नहीं रोटी क्यों, ये सब्जी तो कल बनी थी, ये दाल तो कल बनी थी, और दाल और सब्जी में रोजी ना, इसको बदलाव चाहिए, और रोटी में रिपीटिशन चलता है। अपनी अपनी धारणाएं बना ली है, इसमें हम क्या करें। तो अध्यात्म जो है इसमें, भक्ति में, अध्यात्म में ये रिपीटिशन दोष नहीं है, गुण है। सिद्ध चक्र विधान की एक जयमाला उसमें आता है, जयमाला के पहले जो छंद होते हैं ना, कुछ अर्घों के बाद जयमाला के पहले, तो उसमें लिखा है कि हे भगवान, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं और बार बार कई बातें आ जाती हैं, तो उसमें लिखा है नहीं भक्ति भाव में नहीं पुनरुक्त भणंत, पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता। क्या तो अभी पढ़ते हैं अपन कि जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। अभी व्यवहार नए को कितना हे बताते आ रहे हैं जब से, और उसकी अपेक्षा से निश्चय नए को उपादेय बताते आ रहे हैं, और जहां भी निश्चय नए के किसी भेद को हे बताना उन्हें है तो वहां उसे व्यवहार कह के ही उसका हे बना बताते हैं। ठीक है, ये तो व्यवहार है, ऊपर की नए की अपेक्षा ये व्यवहार हो जाता है, कहते या नहीं कहते। यानी सीधी सच्ची बात है कि निश्चय उपादे और व्यवहार ही रहा। जैसे कि परद्रव्य के संयोग की बात है, ये तो सब व्यवहार ही व्यवहार है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो कभी निश्चयपने को प्राप्त नहीं होता है शांति। लेकिन जो रागादि आत्मा का है उसे सब ही अशुद्ध निश्चय नए कहें, क्योंकि उसे निश्चय का नाम दिया गया है। अंतर समझना, एक वो व्यवहार जो कभी निश्चय नहीं बनता, एक वो निश्चय जो कभी व्यवहार नहीं बनता। असद्भूत व्यवहार में कभी निश्चय नहीं बनता, और परम शुद्ध निश्चय में कभी व्यवहार नहीं बनता। अब अशुद्ध निश्चय न, एक देश शुद्ध निश्चय न, और परम साक्षात शुद्ध निश्चय न, उसको साक्षात भी कहते हो, अकेला शुद्ध निश्चय न भी कहते हैं। शास्त्र में दोनों नाम आते हैं, लेकिन अपन साक्षात इसलिए लगाते हैं कि जो परम शुद्ध निश्चय न, उसको हम अलग कर सके। ये अपने नीचे के नए से अपेक्षा निश्चय है और ऊपर की अपेक्षा व्यवहार है। तो ऐसे एक दूसरे को निषेध करते चले जाते हैं। रागाद ही अपना है, अशुद्ध निश्चय ने कहे कहा पक्का है, तुम हो, तुम उसकी स्वामी हो, तुम उसके कर्ता हो, तुम उसकी भुक्ता हो। गलती करोगे और स्वीकार नहीं करोगे तो व्यवहार प्राश्चित भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए तुम राजा देख के करता हो ये मानो, और क्या तुम्हें हमेशा करना है ना, ये नहीं करना है ना। तो आत्मा का स्वभाव राजा देख करने का नहीं है, ऐसा कह के उसे व्यवहार कह करके उसे अगले नए को कहा। एक देश शुद्ध निष्ठ न, यही भाई भाई साहब करने योग्य कार्य है। फिर कहा कि अपूर्णता तक कब तक रहोगे, अपूर्णता में कब तक रहोगे, पूर्णता को प्राप्त करो ना। इसलिए उसे व्यवहार कह दिया और पूर्णता को उपाधि कह दिया, निश्चय कह दिया। फिर कहते हैं कि ये जो पूर्णता है वो तुमने अभी दृष्टि में की है, तुम्हें प्राप्त थोड़ी हुई है, उसके बाद तो नए ही नहीं रहते हैं। यदि पूर्णता माने केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो नयों का काम ही नहीं है। लेकिन तुमने अभी निर्णय किया है क्या, तो वो कहते हैं कि इसके लक्ष्य से तुम्हें पूर्णता के जो पर्याय वाली पूर्णता के लक्ष्य से पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, दृढ़ स्वभाव की पूर्णता के लक्ष्य से पूर्णता प्राप्त होती है। इसमें भी मैं आपको एक बताता हूं, श्रीमद् का एक वाक्य है कि पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है, सुना क्या नहीं? और इसमें ये अर्थ चलता था पहले संग्रह में बहुत ज्यादा कि मुझे तो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करना है, ये नक्की करो, है ना। मैं तो सिर्फ मोक्ष के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुमुक्षुपना, इसको बोलते हैं पूर्णता से के लक्ष्य से शुरुआत। लेकिन मेरे को ये अर्थ नहीं जमा, पर श्रीमद् तो है नहीं कि उनसे बात की जा सकती थी, और बाकी बीच वाले जो भी करें और अपने मुमुक्षु भी जो भी करें। तो मैंने ये उठाया था हीरालाल कालासी भाई सबके सामने कि ये अर्थ गलत है। तो पूर्णता के लक्ष्य से माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ही पूर्ण है, तो सम्मान दर्शन की प्राप्ति उसके लक्ष्य से होती है कि केवल ज्ञान के लक्ष्य से होती है? क्यों समझ आगे ना आपके, इसलिए मेरे पूर्णता माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो पूर्णता है, और उसके लक्ष्य से उसे अपने ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनाओ तो सम्यक दर्शन रूप धर्म की शुरुआत होगी। लेकिन अब तो बहुत लोगों ने मानी, बहुत लोगों ने नहीं मानी, जो पुराने होते हैं जो वो मानते आते हैं 10-20 साल से, तो उनको वहां से बदलना बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया ना क्या, कि मतलब मोक्ष जाना है और कुछ नहीं चाहिए। उससे अपना उनका नाम बना मुमुक्षु, आसांति जी ने अपनी क्लास में कहा ना थोड़ा मुमुक्षु और आत्मार्थी। जब ये आत्मार्थी ट्रस्ट जो दिल्ली में बना ना, जब उसकी स्थापना हुई तो उसमें तो मैं शुरू से ही सक्रिय रहा था, तो मेरे से पूछा क्या नाम रखे, मैं कहा तुम मानोगे नहीं, क्यों, क्योंकि सारे देश में जो आग लग रही है तो उससे अलग तो हट नहीं सकते। नहीं साहब आप इसी बात क्यों कहते हो, हम मानेंगे मानेंगे। तो मैंने कहा नाम इसका आत्मार्थी ट्रस्ट रखा, क्यों, मोक्षार्थी और आत्मार्थी नहीं, मुमुक्षु और आत्मार्थी इनमें है झगड़ा। क्योंकि मोक्षार्थी तो कोई बोलता नहीं है, मुमुक्षु बोलते कि नहीं बोलते, बोलिए। तो मैं कहता हूं कि मोक्ष भी पर्याय है, और इच्छा भी राग है, दोष है, मतलब अच्छी चीज नहीं है। और पर्याय के लक्ष्य काम नहीं होना है और इच्छा का विनाश करना है। क्यों तो तुम मुक्ष क्यों बनते हो? आप समझ गए ना? और आत्मा ये द्रव्य स्वभाव का नाम है, त्रिकाली ध्रुव का। और अर्थ माने होता है प्रयोजन। तो आत्मा ही है प्रयोजन, जिसका माने आत्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो तू है ही, तो तुझे चाहिए क्या? तो सीधा अर्थ हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो चाय खत्म हो गई ना। आप कहें इसमें भी तो हो गया ना, आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने आत्मा तो चाहिए, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि चाहिए वाली बात तो तूने खड़ी रखी है ना, मांग तो रखी है। भले ही तूने इतनी बातें करी, नाराज मत होना, ये मैं आपको उत्कृष्ट बात बता रहा हूं और जो कि अपनी चीजें प्रसिद्ध हैं उनको बोलता हूं, लेकिन वो किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं। इस रूप में मत लेना, नहीं तो कह नहीं सकता फिर मैं। सबसे बढ़िया बात में अपन प्रस्तुत करते हैं ना शांतिलाल जी, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादि के द्वेष हरि जे, पर माता में निज पद दीजे। जो मैं नवोकार मंत्र पर व्याख्यान करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन मांगना तो बंद नहीं किया, मांगना तो नहीं छोड़ा। अरे इंद्रपद नहीं मांगा, पांच इंद्रियों के विषय नहीं मांगे, चाहे राग द्वेष का हरण करने की चाह थी, वो चाह भी तो राग ही है। और निज पद माने मोक्ष पद है, वो मेरा मोक्ष पद दीजिए, तो मोक्ष भाई मोक्ष हो गए ना। मैं तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बात तो यह है। क्यों? क्योंकि मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मुझ में कोई कमी हो तो मैं कोई मांग प्रस्तुत करूं। रे प्रभु तू काही बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा, पर कियास करे क्यों मुंह रखे, तू काही बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा। तो ये कितनी बढ़िया बात है, ये मांग क्या? और देखो अभी खतरनाक बात कह रहा हूं, पर की आस करे क्यों मुंह रखे, पर माने क्या? स्त्री पुत्र मकान जायदाद भाई बंद नगर नगर वाले गांव वाले प्रधानमंत्री पाकिस्तान अमेरिका, क्यों? हमें तो यही पर दिखते हैं कि ये अनंत सिद्ध भगवान ये तेरे लिए पर है क्या? नहीं, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि ओबामा और ओसामा जैसे जे पर हैं, ऐसे ही पर सिद्ध भगवान है क्या? समझ में ना, बहुत मुश्किल है भाई साहब। देखिए परम तत्व ये है, असली फैक्ट ये है। ये मांगने की वृत्ति क्यों नहीं हमारे अंदर से निकलती है? मैं तो बहुत अंदर हृदय से कहता हूं कि जो भी आप लोग भक्तियां करते हैं ना, वहां पर यहां भजन गाते हैं, मैं सुनता हूं, तो मुझमें जिसमें जरा भी गंध, एक तो कर्तृत्व की और एक भिखारीपन की आती है, वो बिल्कुल मेरे को नापसंद है। एक दफे पूरे गुण के सिलेक्ट करो, वो छपाई है ना आपने हर किताब, वो मेरे को पसंद नहीं है, आप बिल्कुल सिलेक्ट करो जिसमें बिल्कुल कर्तावाद की गंध नहीं हो, वो बिल्कुल कुछ नहीं मांगा गया हो, और वो किताब अलग से छपा, और लग दो जब भी अपने आगे भक्ति गीत व भजन गाना है वो एक गाएं और सारे मुख्य मंडलों को भी दे दो। इसमें कोई अपन से किसी राग देश की बात नहीं है। गौरव गांधी तो बहुत महान आध्यात्मिक थे और उनके बहुत बढ़िया हैं, उनके आप तीन तो सुन लिए, चौथा एक क्यों ले जाते, हम तो अपनी बात आप समझ गए ना, हमें किसी की भलाई बुराई से कुछ मतलब नहीं है, हम किसी की भक्ति की वजह से उस व्यक्ति की कोई हम ऐसी चीज अपने चित्त का रोजाना के पाठ की वस्तु नहीं बनाएंगे। क्या 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 मेरे समझ में आया, हम तो माल चुन रहे हैं। आप बाजार में जाते हो तो सच्चे वो हो कि जिस दुकान पे अच्छी सब्जी मिले उसी से लेते हो, ये सब्जी वाला अच्छा है, सब्जी वाला अच्छा नहीं चाहिए हमें एक मुमुक्षु की दुकान है, हमें मुमुक्षु की दुकान नहीं चाहिए, हमें तो माल बढ़िया चाहिए, हम तो माल के हिसाब से ही खरीदेंगे। ख्याल में आज आपकी समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं। एक लिखा है सीतम्बर आचार्य ने कि मेरे भगवान महावीर से मुझे राग नहीं है, सुनो, और कपिलादिक से द्वेष नहीं है, क्या कह रहा है, हाँ, युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह, जिनके वचन युक्तिमान हैं, जो सत्य की कसौटी पर सही उतरते हैं, बस उनका हमने परिग्रह किया, उनको हमने ग्रहण किया है, पर महावीर की वाणी युक्ति पर उतरती है इसलिए हमने ग्रहण की है, महावीर हमारे हैं इसलिए हमने ग्रहण नहीं की, और कपिल हमारे नहीं है इसलिए हमने रिजेक्ट नहीं की। कैसा है शुरू की पंक्ति, युक्तिमत वचनों से दस कार्या परिग्रह, ये तो मैं नहीं बता दिया, और मुझे वही मुद्दे की बात याद रहती है। अब ऊपर की पंक्ति इतना मुझे मालूम है कि वीर से मुझे राग नहीं है और कपिल से द्वेष नहीं है, लेकिन वो पंक्ति पूरी ख्याल में नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे और न द्वेषः कपिलादिषु, समझे ना, ये राग है। कितनी बढ़िया बात कही, कई सीतामढ़ी आचार्यों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। जब अपना शिविर आगरा में लगा था ना, चौथा शिविर माने 72-73 में, तो वहां पर सामने ही जहां शिविर लगा था एक स्थानक वासियों का आश्रम था, स्थानक, वहां अमर मुनि ठहरे हुए थे, तो वहां से हम मिले उनसे, तो उन्हें हमको एक मैगजीन दी, उस मैगजीन में विज्ञापन में एक जगह एक श्लोक लिखा था, वो मैंने उस वक्त अपनी डायरी में लिख लिया था, वो खो खो आ गई, लेकिन मैं उसका भाव बताता हूं क्या लिखा था उसमें, वो बहुत मुझे पसंद आया कि मेरा जीवन कोई हमारा पूर्वज कह गया है इसलिए उसकी हमको पुष्टि करनी है, चाहे वो सही होता है गलत, इसके लिए हमारा हम पैदा नहीं हुए हैं, ऐसा है क्या, तो समझे ना, हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि पूर्वज जो कुछ भी कह गए हैं बस उसको हम ढोते रहें और लोग विरोध करें तो हम सिद्ध करते रहें, हम तो जो वस्तु स्वरूप है हम उसके हैं, हम तो उसके लिए समर्पित हैं, हमें अपने आत्म कल्याण करने के लिए हम इस मार्ग में आए हैं, क्या ये बहुत खतरनाक बातें हैं जो कहना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि अपन को सच्चा आत्मार्थी बनना है तो इस बात पर हमको बहुत गहराई से ध्यान देना होगा। वो खतरे में है, वो ऋषभदेव खतरे में है, फलाना खतरे में है, जान की बाजी लगा देंगे। हमारा मनुष्य भव किसी एक जमीन के टुकड़े, किसी एक खतरे के लिए नहीं है। आप अरे समझिए ना क्या कहना चाहता हूं, जो खतरनाक है सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। नहीं साहब, वो तो करना चाहिए, वो तो ऐसी बात है, ऐसी कैसी बात है, हम कैसे छोड़ देंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नाराज मत होना, कि अपन कहते हैं ऋषभदेव के जमाने में, वहां भी किसी जमाने में कभी ऐसा था जब शांतिनाथ चक्रवर्ती रहे होंगे तब सही, तब अपन सारा देश जैनी था। नहीं से होगा कभी तो कल्पना करो, और आज हम जिस पोजीशन में हैं, यानी सारा देश हमारा था, माने हर घर हमारा था, जिसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, और हर मंदिर हमारा था, आदिनाथ से लेकर और कई तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तो अयोध्या हमारी थी, बनारस में हमारे भगवान ने जन्म लिया तो बनारस हमारा था। अब क्या कर रहा तुम्हारा, और यदि तुम ही नहीं रहे तो जो हैं अभी तुम्हारे बेबी नहीं रहेंगे। क्या क्या समझ में आया, ये तो जब आदमी नहीं रहेंगे, मतलब जो आदमी जैनी है और वो अजैनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उनका घर कहेगा मैं जब जैनी था तब का मेरा ये घर है, इसलिए मैं जैनियों को दे दूं और मैं दूसरा मैं दूंगा हिंदुओं वाला घर, ऐसा होगा। वो उसका घर उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आ रही नहीं आ रही। यदि आपने मुमुक्षुओं ने एक मंदिर बनाया और उस गांव में एक भी मुमुक्षु नहीं रहा, तो आप हाथ जोड़ोगे बाकी के दिगंबरों से, भैया तुम संभालो इस मंदिर को। और यदि उनने ये कह दी कि हम तो फूल चढ़ाएंगे, तुम्हें जो दिखे तो कहना संभालना, तो सुमंत प्रकाश जी, मैं आपको बहुत मरने के बाद बताना चाहता हूं, मोटानी को मैंने कही है और उनसे उसे छापने के लिए भी कहा है, वे छापेंगे तो फिर अपन भी छापेंगे। मैं बड़ौदा यहां पर गया था परिसर में, वहां से गुरुदेव जहां रहे थे पाले, तो मैं वहां के दर्शन करने के लिए गया। फिर मुझे कहा गुरुदेव रहे कृष्णा, तो गुरुदेव के प्रति जो राग है ना उसकी वजह से हूं गया। तो वहां जो मंदिर देखा, उस मंदिर में आप भी जाके देखना एक दफे, और जो मैं कह रहा हूं उस बात पे गंभीरता से विचार करना, कि उस मंदिर में गुरुदेव की फोटो लगी थी और विद्यासागर जी की लगी थी, विद्यानंद जी की लगी थी, आचार्य संत सागर जी की लगी थी, और ऐसे सब वो उसमें फोटो थी। आपने देखे या नहीं, हैं? वो 65-70 मुनियों के फोटो उसमें लगे थे, ऐसे ग्रुप के ग्रुप में लगे थे, और वो सोनगढ़ वालों ने ही मंदिर बनाया था, उसकी प्रतिष्ठा भी पूरी सोनगढ़ वालों की तरफ से ही हुई थी। आप समझे ना, अब वहां जो मुख्य उसके कर्ता धरता थे, एक मनसुख भाई करके, जो पूज गुरुदेव श्री के ही शायद भूआ भूआ के ऐसे लड़के बड़के ऐसे कुछ थे, जिनकी पार्टनरशिप में गुरुदेव दुकान करते थे, और गुरुदेव की मैं दुकान भी देख के आया हूं, जिसमें गुरुदेव रोजाना बैठते थे, और वो मंदिर भी, और वो भाई भी, उनके बगल में ही उनका मकान है, वो मनसुख भाई के तो नहीं है, उनके लड़के हैं। बस एक घर मुमुक्षुओं का वहां रह गया, ख्याल में आए ना, और बाकी 50-50 घर दिगंबरों के हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए आ गए, नौकरी में आ गए, कुछ फिर व्यापार की वजह से आ गए। ख्याल में, अब व्यापार में तो कौन जाएगा पाले, अब नौकरी में तबादले हो जाते हैं तो पहुंच जाते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या क्या होगा, कैसा ये तो गुरुदेव के समय से ही हो गया है। ये बताऊं मैं आपको जिस बात के लिए सुना रहा हूं और जिस बात के लिए मैंने छापने के लिए उनको बोला है, उनकी हिम्मत पड़ेगी छापेंगे तो। अभी वो भाई जिंदा है जिनने मुझे से बात करी है, उनसे जाके पूछ सकते हो आप कैसा ये तो जब सही हो गया। क्यों है, क्या बात करते हो आप, हम तो कोई इनकी एक पत्रिका लगा दें तो हमारी जान ले लेते हैं लोग है? ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हम गए थे गुरुदेव श्री के पास, तो गुरुदेव श्री ने कहा चलने दो, क्यों जब तुम वहां है हो ही नहीं तो मंदिर को सूना करना है क्या, खाली करना है क्या, दर्शन पूजन करने तो आते हैं ना क्या, दर्शन करते हैं और मंदिर है नहीं दिगंबरों का, तो फिर आगे दर्शन करते हैं पूजन करते हैं तुम्हारी शुद्ध तेरापन सामना ऐसे करते हैं आप समझिए ना, तो अभी ये तुम इसमें इस हृदय में नहीं पढ़ो क्या। बात यहीं तक नहीं हुई थी, आगे और बढ़ी कि उन लोगों ने मिलकर के गुरुदेव का फोटो हटा दिया। सुनो सुनो सुनो, अब क्या करें, अब जो भाग गए थे वहां से कहीं यहां बड़ौदा आ गए थे कहीं सूरत चले गए थे अपने मुख शुभाई, अब उन सब ने इकट्ठा करके एक भाई मुख शुभाई हमको ले गए थे, हमें साथ गए थे मतलब, तो कहा उन्होंने फिर हमने बहुत ज्यादा कोशिश करके और उनसे समझौता करके और फिर कहा कि नहीं गुरुदेव की एक फोटो तो रहने दो, तो एक फोटो हमने नई लगाई है, वो तो उन्होंने तोड़ ताड़ के फेंक दी अपमान करके। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अरे भाई सारा देश अपना था, सारे घर अपने थे, सारे मंदिर अपने थे, ख्याल में आई ना। हम कहते हैं कौन यहां पर हिमालय के ऊपर है, वो मंदिर भी अपना है, पुरी का भी अपना ही है, वो फलाने नेमीनाथ है, फलानी जगह आदिनाथ है, सब अपने थे। अब जो अपने हैं उन्हें तो संभाल लो भले आदमी, क्यों और उन्हें क्या संभालना है, जैनी जैनी बने रहें और नए लोग भी तत्व ज्ञान के बल पर जैनी बने तो बहुत संभल जाएंगे और बहुत बन जाएंगे नए। जहां मूर्तियों के सौ घर होंगे वहां मंदिर नहीं बनता है, क्यों। अब गाजियाबाद में इतने मंदिर हैं गुरुदेव के बनाए हुए, उनकी प्रतिष्ठा किए हुए, अब एक एक घर नहीं उस गांव में, अब वो एक घर भी कब खत्म हो जाएगा, ये बुढ़े सुढ़े लोग हैं ना जो शहर में नहीं आना चाहते हैं इसकी वजह से है, बच्चे बच्चे तो सब भाग गए, उधर उनके मरने की देर है, फिर मंदिरों में से आप मूर्तियां उठा कर लेके दूसरी जगह ले जाओगे क्यों, और फिर दूसरों पर कब्जा हो, क्या क्या करोगे आप, इन्हें इसमें क्या दम है। जो क्षेत्र कमेटी के प्रेसिडेंट अधिकारी होंगे वो तो जो करते तो करने चाहिए उन्हें, अपन उनके पूरे समर्थन में है, अपन उनके विरोध में नहीं है, कि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं, क्यों। संतों ने अपना घर छोड़ा है, अनंत का रूप धारण किया है और हमने भी अपना जीवन समर्पित किया है, भले ही हमने वो दशा प्राप्त नहीं कर पाई हो, हमने दिगंबर दशा में पढ़े, लेकिन अपना आत्म कल्याण की भावना से जीवन समर्पित तो किया है ना। अजय बैठे सुमित जी, तो इन्हें किया कि नहीं किया तो क्या फर्क है, बैठे के लिए कर दो तार दो कपड़े हैं मोटे छोटे, ये नहीं फेंकना है और क्या है, फेंक सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब आत्मार्थीपने की दृष्टि से हम किसी से पीछे नहीं है, हम आत्मा के कल्याण के लिए ये सब कर रहे हैं। बोलो अदली भाई समझ में आई कि नहीं आई, तो वहां प्रतिवरिष्ठ क्यों हो, जिनने शादी नहीं करी तो उनको जो उम्र के तगादा है वो तगादे के अनुसार जो विकृतियां होती हैं उन्हें नहीं हुई होंगी, नहीं होती होंगी, इनने इतना बड़ा त्याग काय के लिए किया? कुंभ से तमर आचार्य का जो वाक्य है उसका अर्थ कर रहा हूं। हमें इस सब के इसके लिए हमारा जीवन समर्पित है। मैं जयपुर में आया था तो मैं पूरी समाज के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व रहता था, और राजस्थान सभा में भी मैं कभी मुझे बना देते थे वाइस प्रेसिडेंट, कभी कुछ ना कुछ कार्यकारिणी में तो ले ही लेते थे। मैंने कभी कोई प्रतन नहीं किया, क्यों? क्योंकि समाज के साथ नहीं मिलेंगे तो अपने तत्व की बात पहुंचाएंगे कैसे। लेकिन एक दफे मामला आया तो मैंने कहा भाई मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। क्यों? कि आपकी जो उद्धारों की लिस्ट है, जीर्णोद्धार, मंदिरोद्धार, तीर्थोद्धार, महिलाओं का उद्धार, बच्चों का उद्धार, साहित्य का उद्धार, इन सब उद्धारों की लिस्ट में यदि अंत में भी आत्मोद्धार शामिल हो तब तक मैं आपके साथ शामिल रहूंगा। मेरे से लिस्ट बनवाओ तो सबसे ऊपर लिखूंगा आत्मोद्धार। समझ रहा है क्या? नहीं, फिर बाकी के उद्धार भी लिखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूंगा, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं। लेकिन जिस लिस्ट में वो आत्मोद्धार नाम का कोई कालम ही नहीं हो उसमें शामिल होकर मैं क्या करूं? तो जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया है, आत्मकल्याण के लिए, और मैं ये मान के चलता हूं कि जिनने शादी नहीं की, गृहस्थी नहीं बसाई, उनने आत्मकल्याण के लिए ही अपना जीवन, क्यों, किसी तीर्थ की रक्षा के लिए, किसी बिल्डिंग की रक्षा के लिए, किसी विधवाओं का उद्धार करने के लिए, इसके लिए उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। यदि उसने विधवाओं का उद्धार करना था तो एक विधवा से शादी कर लेता तो कम से कम एक का उद्धार तो होता। कहां उलझ गए हम? आप सोच नहीं सकते हैं। अशोकनगर में बंदी जी एक कोई विधवा के शादी का प्रसंग आया, वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र की लड़की थी तो वो कर रही थी, तो मैंने कुछ उसका कोई विरोध विरोध नहीं किया। वो करे अब ठीक है, वो नहीं रह सकती, अब जैसी छोटी उम्र है, बाल विधवा है, तो करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर मेरे पास लोगों ने कहा नहीं नहीं पंडित जी भी अनुकूल है, पंडित जी भी अनुकूल है। तो साहब वो सभा रखी बहुत बढ़िया, वो शादी करी, फेरे में भी पढ़ाए, और कहा पंडित जी का भाषण होगा उसमें। मैं कहा पागल हो गए हो बेटा, मैं विधवा विवाह का विरोधी नहीं हूं लेकिन समर्थक भी नहीं हूं। क्या आप समझ गए ना? अरे उसको आत्मकल्याण की भावना का अवसर मिला है, और यदि उसको कोई ऐसी वो नहीं है तो आत्मकल्याण के मार्ग में लगे ना। आप गलत समझे। अब जो कर ही रही है, हो ही गया है, अब उसके विरोध में झंडा लेके खड़े होना, जैसे कि और लोग खड़े थे मेरे पास, वो भी आए थे, तो मैंने कहा भैया मैं इसमें नहीं हूं। अच्छा तुम्हारे दोस्त की लड़की, दोस्त मोस्त से मतलब नहीं है, ख्याल में आई ना? लेकिन उनने समझ लिया कि जी हमारे पक्ष में है। मैं कहा मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हूं। समझ लिया ना आपकी में? अब आप कोई ये नहीं समझ सकते, ये समझेंगे या तो ये पक्ष वाले हैं या ये विरोधी हैं। और आज तक वो मैं उसी विचार का पक्का हूं। अरे तीर्थों की रक्षा का मैं विरोधी थोड़ी हूं, आप समझिए ना। मैंने कहा था तेरी सभा में, और व्यक्तिगत भी कह रहे आप समझ सकते हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, उसका मुझे कोई विरोध नहीं है, समझे ना। और मेरा समर्थन भी समझ लो, यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कहो कि मैं उसके बारे में अपनी जिंदगी का एक सेकंड मेरे पास उपलब्ध मान लो तो एक पैसा, वो जो भी शक्ति है वो मैं उसमें नहीं लगा सकता। आप समझ रहे हैं ना आपके, जब आप करो कोई बात बोलना हो तो मैं उसकी अनुमोदना कर दूंगा। मेरी दृष्टि में वो अपना जीवन अपना ज्ञानोपयोग खर्च करने के लायक में वह काम, मैं तो इसमें ही अपना जीवन लगाना चाहता हूं, इसमें ही अपना उपयोग को लगाना चाहता हूं, इसमें ही वाणी की ताकत को लगाना चाहता हूं, इसमें ही पैसे की ताकत को लगाना चाहता हूं, जो कुछ भी इस लोक में अपना कहा जाता है, मुझे इससे बाहर कुछ करने का विकल्प नहीं। लेकिन आप ऐसा कहते नहीं, अब किस किस से विरोध लें, किस किस से क्या कहें, किसको मानना है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि अपने विचारों को बहुत संतुलित भाषा में व्यक्त भी करना चाहिए, वाणी में भी और लिखने में भी, क्योंकि जो सचमुच आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो उन्हें तो कोई मार्गदर्शन मिले, समझ जी, उन्हें तो कोई मार्गदर्शन मिले। ऐसे ही एक नए पक्षातीत की बात है, इसलिए कह रहा हूं ये नए पक्ष। मैं मेरा जन्म व्यवहार के विरोध के लिए और निश्चय के समर्थन के लिए नहीं हुआ है, मैं पक्षातीत होने के लिए हुआ है, समझ गए ना। इसमें से जो इतनी बात मैंने करी, भैया समझना, मैं प्रसंग बदल के यहां पर ऐसे भटक गया हूं। अब कौन सी बात शुरू हो रही है, इन उदाहरणों से आपको ये मालूम पड़ेगा कि अभी ये निश्चय नए के पक्ष को भी व्यवहार जैसा ही हे कह रहे, पक्षपात कह रहे। आप समझना है ना, ये कहना मैं चाहता हूं कि भैया वो जो परम शुद्ध निश्चय नए है उसको तो आश्रय करने के लिए कहा है समय सार में, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की, क्यों कहा कि नहीं कहा, अथवा निश्चय नए से जाने हुए नौ तत्व वही सम्यक दर्शन है। अरे भैया उसका ये अर्थ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो निश्चय नए की विषय भूत जो वस्तु है वो अपना भगवान आत्मा है, तो उसे भी शुद्ध नहीं कहते, तो उसको आश्रय करने की कहते हैं, वो नए के पक्ष को नहीं। उसके दो अर्थ होते हैं, कौन कौन, एक वो नयाधिराज जिसे पंचाध्यायी का नयाधिराज कहते हैं, वो नए परम शुद्ध निश्चय नए, और दूसरा परम शुद्ध भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, ये वो और एक उसका विषय, तो उसको भी शुद्ध नए कहते हैं। तो शुद्ध नए के आश्रय से मुक्ति होती है ये कहते हैं, तो नए के की बात नहीं है, वो नए की विषयभूत वस्तु की बात है। वो जब व्यवहार को हे कहते हैं तो व्यवहार को छोड़ने की बात नहीं है, वो व्यवहार नए की विषयभूत वस्तु, माने व्यवहार नए स्त्री पुत्र मकान आजाद को अपना कहता है तो तुम्हें क्या छोड़ना है, ये व्यवहार नए को नहीं, उनमें को मैं अपनापन मानना छोड़ना है। दोनों जगह वस्तु को ग्रहण कराते हैं और वस्तु को छुड़ाते हैं, नए को नहीं। नए तो सम्यक ज्ञान के अंश है, उन्हें छुड़ाने का काम क्या, चाहे निश्चय नए हो तब जीव कर्म से बना हुआ है, ये घबराना नहीं, इसमें अपन जितना पढ़ेंगे ना समय लगेगा, तो क्योंकि आगे तो 71 काम थोक के भाव निपटना है 20 कलशों का, वो उन 20 कलशों पर भी व्याख्यान हो गया ऐसा समझना, समझ गया ना, वो जो आप पाठ रोजीना कर रहे हैं, जीव कर्म से बना हुआ है तथा नहीं बना हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। कल कहा था ना ये तो झगड़े का काम है, वो कहते हैं ये कहता बना ये कहता नहीं, कहते बंद की कथा ही झगड़ा पैदा करती है, लिखी है ना, बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादनी होई, ये बंद की कहानी ही झगड़ा पैदा करती है, ये लाए कहां से तुम, के बना है कि छूटा है? बोलो भैया, तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो या कांग्रेस वाले? जिसको कुछ लेना देना नहीं है वो कहते लाए कहां से तुम हमसे प्रश्न? हमें किसी पार्टी का होना जरूरी है क्या? नहीं, वोट किसको दोगे? हाँ, अरे नए पक्षातीत हो गए, हम सब नए पक्षातीत हो गए। मैंने भी नहीं डाला होगा 20-25 वर्ष से। फिर कोई जैनी मैनी कहीं खड़ा हो जाता है और जबरदस्ती पकड़ पकड़ू के ले जाता है तो वो नाराज ना हो जाए इसलिए डाल दिया होगा 20, समझे ना? नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो कभी गया नहीं, काय को है उस लेन में खड़ा हूं। लेन में खड़ा होना ही भूल गया हूं। पहले तो रेलवे का टिकट खरीदने के लिए भी लेन में खड़ा होना पड़ता था। क्यों? अब तो मैं लेन में खड़ा होना ही भूल गया हूं। ये 300 में दर्शन करने जाते हैं ना और वहां लेन में खड़ा होना पड़े तो मैं कहता हूं मुझे करना ही नहीं है। मुझे इतना कोई तीव्र विकल्प नहीं है। 4 घंटा 1 घंटा लेन में खड़े रहकर धूप में और फिर नंबर आए और 2 मिनट जाकर के उनके सामने ऐसे देखा के निकल के बाहर आ जाओ। अरे मैं तो अब भी आंखें बंद करके देख सकता हूं, क्यों मैं इतने इंतजार क्यों करूं? ऊपर के अपने भगवान है ना, अभी 1 सेकंड में दर्शन कर सकता हूं, नहीं कर सकते? पीछे देखने की जरूरत नहीं है, पीछे ये तो इधर है ना। चित्त ने उपयोग को उधर घुमाया, ऐसे भी दर्शन होते हैं अम्मा जी? होते हैं, बताऊं कहां होते हैं? सहायक संबंध ऋषि का उदाहरण देके बताता हूं। आपने तो सुना होगा कि सौधर्म इंद्र की कितनी तेज चाल है कि जब वो नाचता है और आप ताली बजाते हैं ऐसा ऐसा, तो एक ताली आपने बजाई और फिर दूसरी बजाई, इतने में वो सारे अकीर्तन तेजचालों की वंदना करके वापस आ जाता है और आपकी ताली में ताली मिला देता है। अरे कहीं नहीं बनी, ये तो पूजा पाठ वाले ही बताते रहते हैं। क्यों आप समझे ना? तो अपन ऐसा किया और ऐसा किया, इतने में सारे कीर्तन तैयारों की वंदना करके आ जा। अच्छा, ऐसी वंदना होती होगी? क्या वंदना होती होगी? क्या भैया ये वंदना का स्वरूप नहीं बताया जा रहा? ये तो इंद्र की चाल की बताई जा रही है वो कितनी तेज दौड़ सकता है। समझ गया ना? सबको जम्मू जी वो आता ना, इंद्र जम्मू जी वो पलट सकता, आज तो पलटा थोड़ी है और कभी पलटा का नहीं, वो तो शक्ति का नाप है। तो आपको कैसे, मैं ये कहता हूं कि वहां जाने की क्या जरूरत है, हम भी कर सकते हैं। यदि हमको 3 लोक का जो स्वरूप है वो ख्याल में है और कौन सा कीर्तन तैताला कहाँ है और मूर्तियां तो बिल्कुल सब एक सी है, नान मुख नयन श्याम अरु सेते हैं, क्यों संग सभी देते हैं, एक आंखें बंद करो सब जैसे 1 सेकंड बोलो, करो देवदाली के मंदिर के दर्शन करो, करो 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 बंद, हो जाते कि नहीं हो जाते? सानिया जी के मंदिर के दर्शन करो, पदमपुरा के करो, हो गया ना? भूत डोलते दिखेगा नहीं दिखे? तो उपयोग वहां हो जाए ना, उपयोग है इस चमड़े की आंखों से पुद्गल के पिंड को देखने का क्या मतलब है? देखो, उसमें से किसी ने बंद का पक्ष ग्रहण किया, देखा ना, और उसने विकल्प ही ग्रहण किया। देखो और देखो, और किसी ने अबंध का पक्ष लिया, माने किसी ने, माने कौन? हम तुम में से कोई नहीं, शुद्ध निश्चय ने ये भी समझे, कौन सा शुद्ध निश्चय में होगा? बोलो, सोचो, मांसा लगाओ, वो नैचक्र पढ़ाने वाला है गोदा के? नहीं है। कौन सा निश्चय नहीं होगा ये? दूसरा वाला जिसने अबंध का पक्ष लिया, माने जिसने कर्म बंध का अभाव कर दिया, उसकी बात नहीं है ये, माने केवल ज्ञानी की बात नहीं है, सिद्ध की बात नहीं है। ये नवोदिया में और सिद्ध में जो बना हो चाहे छूटा हो, उस समय भी वो आत्मा अबंध है, बंध ने उसे छुआ ही नहीं है। आप समझेंगे ना, ये उस आत्मा की बात है। यानी वो त्रिकाली ध्रुव का पक्ष लिया, तो त्रिकाली ध्रुव का रखना क्या नहीं रखना, ज्ञान का दे, ध्यान का दे, संदृष्टि का दे, अरे उसे कौन मना कर रहा है, ये तो नए पक्ष का निषेध कर रहे हैं, अबंध है इसका। अरे अबंध तो ये बंध के निषेध की तरफ से बात है भाई साहब, नहीं आई हुई स्पष्ट। देखो अभी अभी बताता हूं, जब समझे कि आप कौन है, अरे आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं उसका मामा हूं, उसका फूफा हूं, क्यों उसका बेटा हूं। तो भैया ये तो तुम किसी के हो, तुम किसी के, हम ना किसी के और कोई ना हमारा, तो फिर तुम हो क्या नहीं, तो वो बताओ ना तुम क्यों। तो मैं निर्मल कुमार हूं, मैं फलाना कुमार, ये नहीं, तो मैं मनुष्य हूं, अरे मनुष्य तो तुम गति की अपेक्षा हो, कि मैं श्रेणी पंचेंद्री हूं, ये तो इंद्रियों की अपेक्षा है, कोई अपेक्षा नहीं लगाओ। और तुम हो क्या नहीं हो, ये तो तुम दूसरों की तरफ से अपने को नाप नाप के बता रहे हो, तो कर्म से बना हो कर्म से नहीं बना, ये कर्म से नाप नाप के बता रहे, तो अपने तक क्या पहुंचे। अब समझ में आया कि नहीं आया, जब हम किसी के कुछ नहीं है, क्यों कि तुम राजस्थानी हो कि मध्य प्रदेशी, नहीं हम कोई आसान नहीं, हम कोई मछली नहीं, किसी का कोई प्रदेशी मदेशी नहीं है, कि हिंदुस्तानी का, हम हिंदुस्तानी भी नहीं, कि क्या बात है, पासपोर्ट तुम्हारा कहां का है, बांग्लादेश से भाग के आए हो क्या, कि भाई तुम समझ ही नहीं सकते हो, ये तो किसी देश की अपेक्षा, प्रांत की अपेक्षा, भाषा की अपेक्षा, ये सारी अपेक्षाएं हैं, और मैं किसी की अपेक्षा नहीं हूं, मैं एक निरपेक्ष तत्व हूं। अब आया समझ में कि नहीं। अब सोचो तुम, कल कोई एक बता रहा था क्लास में कि तुम मनुष्य की बात करोगे तो तुम 70-80 वर्ष के होके रह जाओगे। प्रसाद रात को व्याख्यान कर रहा था ना प्रदुमन, वो कह रहा था 70-80 वर्ष के होके रह जाओगे, यदि तुम अनादि अनंत तत्व हो, क्यों तो तुम मनुष्य नहीं हो सकते, तुम देव नहीं हो सकते, तुम नारकी नहीं हो सकते, तुम केवल ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल ज्ञान भी अनादि अनंत नहीं है। तुम सिद्ध नहीं हो सकते, क्यों पुरुषोत्तम बाबू, आया ख्याल में कि नहीं आया, ये किसी पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी पर्याय में अहम बुद्धि है, और पर्याय में अहम बुद्धि मिथ्या दृष्टि को बोलते हैं, पज्जे मूढ़ा ही पर समझाए, वो द्रव्य जो तुम किसी की अपेक्षा नहीं हो, और फिर हो के नहीं हो कि फिर क्या है, इसका मतलब तुम फिर कुछ नहीं हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें उस द्रव्य का पता ही नहीं है। क्यों हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम तो अभी हम कुछ नहीं है, क्यों क्यों कुछ नहीं है, अब ना हम समाज के अध्यक्ष हैं, ना हम समाज के मंत्री हैं, ना हम अब करोड़पति हैं, ना हम किसी मकान के मालिक हैं, ना किसी की दुकान में मुनीम है, क्यों बिल्कुल हम तो चौराहे पर खड़े हैं, क्यों। अरे भाई तुम्हारा पूरा अस्तित्व भी तुम्हारे पास है, वो लुटा तो वो है जो लुट सकता है, लेकिन तुम लुटने वाले तत्व नहीं हो, तुम तो अलुटने वाले तत्व हो, अलूट तत्व हो। मालूम है क्या कहता हूं, कि
चोरी का माल किसे कहते हैं? आप लोगों के पास चोरी का माल है क्या? नहीं, कोई इनकम टैक्स की चोरी नहीं कह रहा हूं, तो खूब करना, तुम नहीं करोगे तो हमारी संस्थान चलेगी कैसे? मैं कोई अनुमोदना नहीं कर रहा हूं, उसका पाप नहीं बांध रहा हूं, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। चोरी का माल किसे कहते हैं? वो नहीं कि जो तुम चोरी करके लाए हो, वो कि जिसको कोई हमसे चुरा सकता है वो सब चोरी का माल। समझ आया? और वो जो जिसको कोई हमसे चुरा नहीं सकता वो बिना चोरी का माल। ये तो नीतिकार ने लिखा है। क्या लिखा है नीतिकार ने? बोलो। न चोरी हार्यम न च भ्रातृभाज्यम दये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये विद्याधन कैसा है कि जिसे चोर चुरा नहीं सकते, इसे चोरी का माल नहीं है। समझ गए ना? तुम चुराओ नहीं, तुम चुरा के लाए हो वो नहीं, लेकिन कोई तुमने तो ईमानदारी से कमाया है, लेकिन कोई चुरा के ले जा सकता है तो इस चोरी के लायक माल, उसका नाम चोरी का माल। समझ गए ना? तो विद्याधन ऐसा नहीं है कि कोई चुरा सके। और न भ्रातृभाज्यम, ये भी बहुत झगड़ा है, तो भाई बांध ले जाता है। देखो क्या होता है, जैसी जनरल बात कह रहा हूं, ज्यादा उसका असर नहीं लेना, और समझाने के लिए कह रहा हूं। एक पुराने जमाने में आठ आठ भाई होते थे। अब बड़ा भाई का बेटा और छोटा भाई कभी कभी उससे बड़ा होता था, बड़े भाई का बेटा। ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे कई जगह, है ना? अब जब बाप बंटवारा करता तो वो बड़े भाई को भी उतना ही मिलता और छोटे भाई को भी उतना ही मिलता। नया ऐसा मिलना चाहिए, वो बेचारे बच्चे का कौन आप सीख खा जाओगे, अच्छा लगता है क्या? लेकिन भाई साहब वो उसके बाप का माल कहाँ है? क्योंकि भाई ने 60 वर्ष का है, बाप 80 वर्ष का है, तो वो 40 वर्ष से वो कमा रहा है, वो उसकी कमाई है, वो उस कमाई में उसका भी हिस्सा है। समझ गए ना? और अभी छोटे ने एक पैसा नहीं कमाया है, अभी तो पढ़ ही रहा है, खर्चे ही खर्चा किया है, लेकिन बस हिस्सा बराबर का। मुझे भी गवर्नमेंट का कानून हो, तुम्हारे कोई हो, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन न्याय आप सोचो। और उसे फिर उसे सारा भाई बांध ले जाएगा, तो बड़े भाई क्या करते थे? हम तो न्यारे हो जाएंगे, तो वो जल्दी न्यारे हो जाते। अब इन दस दस को पालो, छोटे भाइयों को, उनकी पत्नी कहती इनकी हम सेवा करें दिन रात, ध्यान में आई ना? और फिर आज बाद में ये हमारी संपत्ति के हिस्सा ले जाएंगे, हम दस में के हिस्सा ले जाएंगे, हमने हमारा हो जाते थे। इसलिए वो बड़े भाई लोग अपने बाप से भी अलग हो जाते थे, उसके पीछे। अरे भाई अब मेरा बेटा ही छोटे भाई से बड़ा है तो उसका भी हिस्सा रखो ना, क्यों? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो उसको तो जो दसवां हिस्सा मिलेगा और भाग्य से उसके भी दस हुए तो सौवां हिस्सा मिलेगा, वो तो सड़क पे आ जाएगा, सारी जिंदगी कमाई कर है तो सड़क पर आ जाए। तो भ्रातृभाज्यम वाला मामला भी छोटा मोटा मत समझना आप इसको, कि भाई बात ले जाता है। न चौधरी हार्यम न तो भ्रातृभाज्यम न राज हार्यम, और राजा नहीं ले सकता, ये टैक्स लाओ, ये टैक्स लाओ, फलाना टैक्स लाओ, ये हम कमा कमा के मर जाएं, भाई गवर्नमेंट को दे दें मुफ्त में, क्यों? हमने कितनी मेहनत से कमाया और 30% इनको दे दो, अब तो 30 रुपए पहले 60-70 ले लेते। न राज हार्यम न भारकारी, कोई बोझा भी नहीं है, इसको रखो। अभी मैं बताता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सामने जो बोला वो बता रहा हूं, अपने कानों से सुना। एक बहुत बड़े करोड़पति से मिलना हुआ, करोड़पति क्या, अरबपति, अरबपति क्या, खरबपति, तो वो कहे कि मेरे हीरे हीरे चाहिए, हीरे चाहिए। क्यों? सोना कितना रखे, कहाँ रखे? अब 200 कुंटल सोना मैं कहाँ रखूं, कहाँ कहाँ लेके जा? कितना? 200 कुंटल सोना, समझ में आ गया? अब यहां से कहीं इनकम टैक्स वाला का धारा पड़ा, बाजार से उठा कर ठीक कहां ले जाऊंगा? रखूंगा कहां? इसलिए वो बहुत कीमती हीरा, बस छोटा मोटा नहीं चाहिए, वो 5-20 लाख रुपए कैरेट का मेरे को ऐसा है, हीरा चाहिए। ऐसा बोलता और परमानंद जी ऐसा बोलता था, मैं भी बैठा था सामने। क्योंकि उसका भी वैल्यूम इतना होता है कि ना रखने की जगह है, ना छुपाने की जगह है, ना यहां से वहां उठाने की जगह है, मजदूरों को ले जाना पड़े। और एक चीज ऐसी तो है नहीं कि मजदूरों से ले जाई जाए, अपनी एक जेब में पड़ी रहे, यहां पड़ी रहे, गले में समझ गए ना, ये चाहिए। अब आप समझो भारकारी का अर्थ कर रहा हूं मैं, उसे भार होता ना उसका, और खर्च करो तो ये पैसा, लोग भले ही पंडित आपको धोखे में डालें, कि देखो दान में पैसा दोगे दिलीप भाई तो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा धोखा नहीं दूंगा। ये क्लियर है कि 1 लाख रुपए आप देंगे तो आपकी त्रिवड़ी में से 1 लाख गारंटी से घटेंगे। और बाद में फुट में रहेगा और मिल जाएगा, वो तुम्हारा जाना रहता, ये करना योग वालों से समझते रहना। लेकिन वो पैसे घटेंगे, लेकिन विद्याधन ऐसा है कि दये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना खर्चा करो, दूसरों को समझाओ पढ़ाओ, तो क्या नाम है अंतिम स्वाध्याय, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है वो, तुम्हारा बढ़ने ही वाला है, ये ऐसा धन है। ये तो नीतिकार लिखते हैं। तो चोरी का माल कौन, अब समझ में आया कि नहीं? जो तुमने चोरी करके लाए हो वो नहीं, जो चुराया जा सकता है वो माल। क्यों? कि वो माल ही उतनी ही आकुलता पैदा करता है। कितनी? कि कोई चुरा ना ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए। नींद हराम वो भी करता है, चाहे न्याय से कमाया हो चाहे अन्याय से। शास्त्र में ये लिखा है शांति जी कि न्याय से कमाया हो वो परिग्रह नाम का पाप नहीं है, अन्याय से कमाया हो वो परिग्रह नाम का पाप है। अरे चोरी नाम का पाप अलग है, परिग्रह नाम का पाप अलग है। इस धोखे में मत रहना कि मेरे पास 2 नंबर का 1 पैसा नहीं है इसलिए तुम निष्परिग्रही हो गए। उन्होंने जो लिखा ना बहुबार हूं परिग्रसम नारकसायुषा, उसमें ये नहीं लिखा कि अन्याय से कमाया हुआ नरकायुष बंद का कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, सब न्याय का हो जाए, अन्याय का हो जाए, बाप दादों का दिया हो, वो सब नरकायु के बंद का कारण है, ऐसा तत्वा सूत्र कहता है। ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है।